मेरे प्रिय युवा मित्रों, नमस्कार। दोस्तों, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं अब P 2023 की जो आप तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में कुछ बातें करूंगा, लेकिन इससे पहले एक सूचना तथा दूसरी कुछ एक दो खबरें। सूचना यह है कि हमारे 13वीं बैच के जो ऑफलाइन स्टूडेंट हैं उनके पास स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेज दिया गया है, तो प्लीज़ आप सब अपने अपने मेल में एक्सेस करके उस स्पेशल ऑडियो गाइडेंस को देख लें, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा सा ये पाया है कि बिना सूचना के आप लोग शायद प्रतीक्षा करते रहते हैं और देख नहीं पाते, जबकि मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है कि जो स्पेशल ऑडियो गाइडेंस आपको भेजे जाते हैं वो आपके लिए बड़े उपयोगी होते हैं, और ये एक ऐसा गाइडेंस होता है जो हमेशा आपके पास मौजूद रहेगा। इसलिए अब हम लोगों ने यही सोचा है कि हर सप्ताह जब भी वो भेजा जाएगा एक दिन बाद ही सही आपको इसकी सूचना दे दी जाएगी, लेकिन यदि कभी सूचना नहीं भी दी जाती है तो आपको चाहिए कि आप बकायदे अपना ईमेल एक्सेस करते रहें। दोस्तों, जो खबरें हैं, दो छोटी छोटी खबरें हैं। पहला तो आर्य समाज के बारे में खबर आपने पढ़ी होगी। आर्य समाज एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था हमारे देश की रही है। स्वामी जो दयानंद सरस्वती हैं इसके संस्थापक रहे हैं। आर्य समाज और ब्रह्म समाज एक समय के बहुत ही प्रसिद्ध संस्थान रहे हैं, जिनको आप कह लीजिए कि भारतीय समाज के आधुनिकीकरण में एक बहुत ही अग्रणीय भूमिका रही है। तो आपको आर्य समाज के बारे में अच्छी से तैयारी होनी चाहिए। यहाँ खबर ये है कि आर्य समाज में जा करके कोई भी विवाह करा सकता है, विवाह करा देने का अधिकार आर्य समाज को है। बीच में आर्य समाज से ये अधिकार वापस ले लिया गया था किसी वजह से, लेकिन फिर से उनको दे दिया गया। अब देखिए, जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आर्य समाज में जो विवाह होते हैं, आप जाइए बकायदे आर्य समाज अपनी पद्धति से विवाह करा देगा और उसके बदले में फिर वो आपको विवाह का एक प्रमाण पत्र दे देगा कि इन इनका विवाह इस दिन हुआ। इसका मतलब है कि अब आपका यह जो विवाह है ये मान्य है, बिल्कुल मान्य है। ये मैं बात जानबूझ करके आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि कुछ लोगों को इसको लेकर के कन्फ्यूजन है, लेकिन जब कोर्ट में यह मामला गया तो कोर्ट ने सीधे सीधे कह दिया कि नहीं, यह मान्य नहीं है। तो कोर्ट कह क्या रहा था उसे आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए। कोर्ट का यह कहना है कि जो मान्य होगा सर्टिफिकेट वो सरकार के द्वारा पंजीकृत होना चाहिए। किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को वैधानिक सर्टिफिकेट देने का अधिकार नहीं है। देखिए, हम वैधानिक सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं तो वो सरकार से ही रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तो सरकार आपको सर्टिफिकेट देगी। अब सवाल ये है कि सरकार आपको कैसे सर्टिफिकेट दे, सरकार के पास क्या आधार है आपको सर्टिफिकेट देने का। तो उसमें कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर आर्य समाज में आपने विवाह जाकर के किया है तो आर्य समाज ने जो सर्टिफिकेट दिया है वह सर्टिफिकेट अपने आप में सरकार के लिए पर्याप्त है कि उस आधार पर जो सरकारी एजेंसी है वह आपको सर्टिफिकेट दे देगी। लेकिन अगर आप आर्य समाज के सर्टिफिकेट को सीधे कोर्ट में पेश करेंगे अपने विवाह के प्रमाण पत्र के रूप में तो उसे कोर्ट मान्य नहीं करेगा, क्योंकि वो सरकारी द्वारा अधिकृत नहीं है, सरकारी एजेंसी नहीं है। तो यह आपके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट ये बात होनी चाहिए, क्योंकि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में कभी कभी होता यह है कि हम जल्दबाजी करके कोई बात पढ़ लेते हैं या ठीक से दिमाग में रजिस्टर्ड नहीं होता है तो उसकी फिर काफ़ी बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाती है। दोस्तों, कल पर्यावरण दिवस था और पर्यावरण दिवस पर लेख भी लिखे गए हैं, लेकिन कल जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो भाषण रहा है, खासकर पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक संस्थान में जो उन्होंने अपनी बात कही है, मुझे लगता है कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। दरअसल एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था मिट्टी बचाओ आंदोलन पर, विज्ञान भवन में दिल्ली में, वहाँ प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे। खासकर प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ बातें कही हैं जो डेटा बेस्ड हैं वे मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा। देखिए, जब भी प्रधानमंत्री हैं, गृहमंत्री हैं या कोई भी मंत्री है, जब कोई भी बात कहते हैं या डेटा देते हैं तो उसे आप सरकारी डेटा मान करके चलिए, वो विश्वसनीय आंकड़े होते हैं। हाँ, आप उनकी एनालिसिस कर सकते हैं लेकिन आपको मानना चाहिए को विश्वसनीय आंकड़े हैं। तो पर्यावरण पर प्रधानमंत्री जी ने कुछ बहुत ही अच्छे और बड़े व्यावहारिक किस्म के आंकड़े दिए हैं, और ये आंकड़े ऐसे हैं जिनका उपयोग आप पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे आंसर में कर सकते हैं, यहाँ तक कि बकायदे निबंध लेखन में कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसका कितना उपयोग कर सकते हैं। तो जो कुछ आंकड़े उन्होंने जो दिए हैं मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। पहली बात जो उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कही कि जो भारत जैसे देश हैं ये प्रति व्यक्ति जो उनका कार्बन उत्सर्जन है, एमिशन है, कार्बन एमिशन, वो बहुत कम है। मतलब जो ग्लोबल एवरेज है पर पर्सन, वैश्विक औसत जो प्रति व्यक्ति है, वो 4 टन है प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, और भारत का कितना है? सिर्फ 0.5 टन। सोच करके देखिए तो हम कितना कम कार्बन उत्सर्जित कर रहे हैं। और उसके बारे में उन्होंने कहा कि भारत की जो जीवन शैली है वो पर्यावरण के समानांतर है, और इसके बारे में आप सब जानते हैं और काफी कुछ लिखा भी गया है, और वो बिल्कुल सच भी है। हमारी जो संस्कृति है, असल में सच पूछे तो भारतीय जो दर्शन है, कभी आप सब इस पर विचार कीजिएगा, तो भारतीय दर्शन ने, जो हमारा प्राचीन भारतीय दर्शन है, कभी भी व्यक्ति के आधार पर विचार नहीं किया, समाज के आधार पर भी विचार नहीं किया। उसने हमेशा व्यक्ति और पर्यावरण के आधार पर विचार किया है। उसने शुरुआत ही पर्यावरण या अंतरिक्ष या विश्व इस तरीके से सोचना शुरू किया, और उसमें फिर उसने व्यक्ति को रखा। ऐसा नहीं कि हमने सीधे समाज पर बात करना शुरू कर दिया, सीधे व्यक्ति के जीवन पर बात करना शुरू कर दिया। इसीलिए जो हमारा जीवन दर्शन है बहुत ज्यादा पर्यावरण संगत है, मित्रतापूर्ण है। तो हम केवल 0.5 टन उत्सर्जित करते हैं, जो बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री जी ने यह भी बताया कि 10% एथेनॉल मिश्रण का हमने लक्ष्य रखा है। लक्ष्य क्या रखा है? मतलब परमिशन दे दी है कि आप जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं उनमें, पेट्रोल वगैरह है, उसमें 10% एथेनॉल मिला सकते हैं। इस पर इन्होंने जो 3 बातें कही हैं स्पेशली मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। 3 बातें, देखिए इसी तरह से पॉइंट वाइज आपको चीजें अपने दिमाग में रखनी चाहिए, तभी एग्जामिनेशन हॉल में आप फटाफट उन्हें निकाल कर लिख सकेंगे। तो जब हमने 10% एथेनॉल मिलाना शुरू किया तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है? डेटा देखिए, पहला ये है कि इसकी वजह से 27 लाख टन कार्बन उत्सर्जन कम हुआ। तो कार्बन उत्सर्जित हमने कम कर दिया, क्योंकि एथेनॉल, जैसे अगर पेट्रोल जलाएंगे तो उसमें धुआं निकलता है, डीजल जलाएंगे तो धुआं निकलता है, जब ये एथेनॉल उसमें आप मिला देते हैं तो उत्सर्जन कम हो जाता है। दूसरी बात, 41,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हुई। ये विदेशी मुद्रा की बचत कैसे हुई? क्योंकि हम, आप जानते हैं कि हम तो पेट्रोलियम आयात करते हैं, तो जब हमने 10% एथेनॉल मिलाने की अनुमति दे दी तो सीधी सी बात है कि 10% हम, एक प्रकार से आप यूं कह लीजिए कि हम खुद ही पेट्रोलियम उत्पाद कर रहे हैं, तो 10% हमारा आयात कम हो गया। तो जब 10% आयात कम हो गया तो हमारी विदेशी मुद्रा बची ना, क्योंकि जब हम पेट्रोलियम आयात करते तो विदेशी मुद्रा में उसका भुगतान करते। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि हमने 41,000 करोड़ रुपए बचा लिए। तीसरी बात उन्होंने कही कि ये जो 10% हमने मिलाने की बात कही, तो पिछले 8 सालों में जो हमारे किसान थे उनको इसकी वजह से लगभग 40,000 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। मतलब किसानों को एक जरिया मिल गया एथेनॉल के माध्यम से, तो 40,000 करोड़ रुपए हमने उसमें भी अर्निंग कर ली। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े उन्होंने दिए। 2-3 और आंकड़े हैं फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि अभी जो खासकर मेंस होने हैं उनमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और आप यूँ कह लीजिए कि लेटेस्ट आंकड़े भी हैं। उन्होंने कहा कि पूरे देश में लगभग 22 करोड़ से ज़्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए हैं। मतलब किसानों को कार्ड दिए गए हैं जिसमें उनकी मिट्टी के बारे में सारी जानकारी, जैसे आदमी का हेल्थ कार्ड होता है ना, उस तरह से मृदा हेल्थ कार्ड। तो जब मृदा हेल्थ कार्ड होता है तो किसानों को बकायदे जानकारी हो जाती है कि अपने खेत की मिट्टी में वो कितना खाद मिलाए, कितना यूरिया डाले, कितना फॉस्फोरस डाले, ये सब चीज़ों की उनको जानकारी हो जाती है। तो जो 22 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किए, उससे चूंकि अब किसान बहुत ही साइंटिफिक तरीके से खेती कर रहे हैं, तो उस पर भी आंकड़ा बताया गया है कि किसानों की लागत में 8-10% की बचत हुई, क्योंकि अब ज़्यादा यूरिया नहीं डाल रहे हैं, ज़्यादा खाद नहीं डाल रहे हैं, ज़्यादा पेस्टिसाइड नहीं डाल रहे हैं, और केवल यही नहीं बल्कि उनकी उपज भी बढ़ी। तो लागत कम हो रही है और उपज बढ़ रही है, तो इससे किसानों की आय में आप कह लीजिए कि काफ़ी कुछ सकारात्मक बढ़ोतरी देखी गई। एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि हमारे जो वन क्षेत्र हैं पिछले 8 सालों में उसमें लगभग 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक की वृद्धि हुई है। वन क्षेत्र हमने इतना लगाया है पिछले 8 वर्ष, ये स्पेशली मेंशन कीजिएगा, पिछले 8 वर्षों में 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक की वृद्धि हुई है। दोस्तों, कल हमारे यहाँ संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र की शुरुआत की गई, उत्तर प्रदेश में स्थान है। संत कबीर हमारे भक्ति काल के बहुत ही महान आंदोलनकारी रहे हैं, क्रांतिकारी रहे हैं, समाज सुधारक रहे हैं, आप ये कह लीजिए कि विचारक भी रहे हैं और कवि भी रहे हैं। जो भी कबीर के व्यक्तित्व की इतनी बड़ी विराटता है कि कई कई एंगल से आप उन्हें देख सकते हैं और हर एंगल में वो बड़े भरे पूरे नजर आते हैं। जैसे कि मैंने आर्य समाज के बारे में कहा, बस यहाँ इतना ही कहना चाहता हूँ कि कबीर पर आपकी समझ अच्छी होनी चाहिए। ये आपके सिविल सर्विस का जो आपका सिलेबस है, उनके बहुत ही महत्वपूर्ण कवियों में से एक हैं। और चूंकि अभी अभी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन हुआ, अकादमी स्थापित की गई है, तो यूं कह लीजिए कि अभी सितंबर के एग्जाम के लिए कबीर थोड़े से महत्वपूर्ण भी हो जाते हैं। भक्तिकाल आंदोलन में कबीर शुमार किए जाते हैं। दोस्तों, अब मेरे पास समय कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बच गया है। फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहूँगा, एक दो बातें, कि आप सब प्री में अपीयर हुए। मुझे नहीं मालूम आप सबका पेपर कैसा बना, लेकिन जो होना था वो हो गया। दो तीन बातें मैं स्पेशली कहना चाहूँगा कि आप में से जो भी मुझे लगातार डेली ऑडियो लेक्चर के माध्यम से सुन रहे हैं, हमारी ऑनलाइन क्लासेज ज्वाइन की हुई है, हमारी ऑफलाइन क्लासेज में भी आप सब में से काफ़ी लोग आए हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप सब हम लोगों को बताएं कि जो आप डेली ऑडियो लेक्चर या ऑनलाइन क्लासेज या ऑफलाइन क्लासेज जो सुनते हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उससे आपको कितना लाभ हुआ, कितने क्वेश्चंस उससे पूछे गए, आपको किस किस तरीके की मदद मिली, प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ आप लोग बताएं। यदि आप लोग मुझे ये भी बता सकें कि डेली ऑडियो लेक्चर्स में से कितने क्वेश्चंस आए, क्योंकि ये करंट बेस्ड पूरी तरह से होता है, तो कितने क्वेश्चंस आए, ये भी अगर आप लोग बता सकेंगे तो मैं आपके प्रति हमारी एकेडमी के साथ, साथियों के साथ आभारी रहूँगा। अभी फिलहाल जो आपका पेपर आया था उसे लेकर के मैं कुछ भी बात नहीं करने जा रहा हूँ। मैं बहुत इत्मीनान से पेपर्स को पढ़ूंगा, विश्लेषण करूँगा, तब फिर उस पर हम लोग बात करना शुरू करेंगे, लेकिन मैं विस्तार से बात करूँगा। तो दोस्तों, आज मुख्य विषय के बारे में बस एक ही सेंटेंस कहना चाहूँगा और वो ये है कि अब आप सब प्री 2023 की तैयारी में लग जाएं। उसके लिए बहुत ज़्यादा समय आपके पास है नहीं, आगे हम लोग और बातें करेंगे। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। हमारी ऑफलाइन क्लासेज जो 7 से 21 अक्टूबर के बीच में होने वाली हैं, उसके लिए दर्शन सुखदेव भट्ट, जिनका गांव है पालनपुर, जिला बनासकांठा गुजरात से, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। तो दर्शन, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, मयंक प्रताप करनाल से, रायमा शाक्य श्रीगंगानगर राजस्थान से, दुर्गावती, गौरव मेघवाल उदयपुर से, पायल खत्री उदयपुर से, और सपना थांगे पार्नर महाराष्ट्र से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही दोस्तों, आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।